أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں اور پیارے درشکو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس کاریکرم میں ہمارے ویوہارک جیون سے سمبندھت احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم میں اجتہاد، تقلید جس کو انوسرن بھی کہتے ہیں اور احتیاط کے بارے میں بات چیت کی۔ ہم نے اس کاریکرم میں آپ کو بتایا کہ احتیاط کس کو کہتے ہیں، اجتہاد کس چیز کا نام ہے اور تقلید کیا ہے۔ انتم بات جو ہماری آ کر اس جگہ پر رکی تھی وہ یہ تھی کہ احتیاط کیا ہے۔ ہم نے اس کاریکرم میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ احتیاط کی ویاکھیا کیا ہے، احتیاط کے لیے کن چیزوں کی آوشیکتا ہے، آدھی آدھی یہ سب چیزیں ہم نے بیان کی۔ اب اسی احتیاط سے سمبندھت کچھ چیزیں ہم یہاں پر اس کاریکرم میں بتائیں گے اور اس کے بعد ہم طہارت یا پوترتا کی بحث کو آرمبھ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب توضیع المسائل یا فقہی مسئلوں کے سنکلن کو اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم کو بہت استھانوں پر یہ دکھائی دیتا ہے، بہت جگہوں پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ لکھا ہوا احتیاط۔ تو اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں احتیاط کیا ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ احتیاط دو پرکار کے ہوا کرتے ہیں، یا احتیاط واجب ہوتا ہے یا احتیاط مستحب ہوتا ہے۔ اب جب ہم فقہی کتابوں کے سنکلن کو اٹھاتے ہیں اس میں یہ جگہ پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، ہماری درشٹی پڑتی کہ وہاں لکھا ہوا ہے احتیاط۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ وہ احتیاط احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے؟ تو احتیاط کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد، کوئی دھرم گرو فتویٰ پہلے دے دے اور فتویٰ دینے کے بعد اس فتوے کے انت میں یا کہیں پر احتیاط کے شبد کا اپیوگ کرے تو اس کا ارتھ یہ ہوا کہ یہ احتیاط احتیاط مستحب ہے، اور اگر فتویٰ سے پہلے ہی احتیاط شبد کا اپیوگ کر لے اور فتویٰ نہ دے تو وہ احتیاط احتیاط واجب ہوا کرتا ہے۔ احتیاط مستحب جیسے کہ مجتہد نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی ویکتی غسل ارتماسی کی نیت سے پہلے نیت کرے، اس کے بعد اپنے پورے شریر کو دھیرے دھیرے پانی کے اندر ڈبو لے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا غسل صحیح ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ اپنے شریر کو پانی میں ڈبوئے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر دھیرے دھیرے ڈبو رہا ہے تب بھی اس کا غسل صحیح ہے، لیکن احتیاط یہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ جیسی نیت کرے ایک ساتھ پوری ڈبکی لگائے۔ اور احتیاط واجب کیا ہے؟ احتیاط واجب یہ کہتا ہے کہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ شروع ہی سے، آرمبھ ہی سے اس نے احتیاط شبد کا اپیوگ کر لیا ہے۔ جیسے کیا اگر کوئی ویکتی اس بات کی نظر کرے کہ وہ کسی وشیش غریب، کسی وشیش فقیر کو صدقہ دے گا تو احتیاط یہ ہے کہ وہ انسان کسی دوسرے ویکتی کو صدقہ نہیں دے سکتا۔ اب اگر مان لیجئے اس سے پہلے کہ وہ صدقہ اس وشیش فقیر کو دیتا اس فقیر کی مرتیو ہو جاتی ہے، وہ سورگواسی ہو جاتا ہے، تو ایسے صورت میں احتیاط یہ ہے کہ اس کے پریجنوں کو، اس کے وارثوں کو وہ صدقہ دیا جائے۔ یہ تو پہچان کے معاملے میں احتیاط مستحب اور احتیاط واجب کا انتر ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یعنی کیا؟ یعنی احتیاط واجب وہ ہے جسے مجتہد آرم سے ہی احتیاط شب کا اپیوگ کرتا ہے، اور احتیاط مستحب وہ ہے جس میں مجتہد پہلے فتویٰ دیتا ہے اس کے بعد احتیاط شب کا اپیوگ کرتا ہے۔ یہ تو پہچان کے آدھار پر ہوا۔ دوسرا فرق جو انتر ہے، دوسرا جو فرق ہے وہ ہے کاریہ کے اوسر پر۔ یعنی کیا؟ یعنی جب मुज्तहिद ऐसे समय पर क्या करे जब वो एहतियात वाजिब देखता है और एहतियात मुस्तहब देखता है, तो वो मुकल्लफ जिसको कार्य करना है वो ऐसे समय पर क्या करे। तो कहा यह जाता है, फतवा यह दिया गया है कि अगर किसी जगह पर एहतियात मुस्तहब लिखा हुआ है तो जो व्यक्ति उस मुज्तहिद का अनुसरण कर रहा है उसके लिए अनिवार्य ये है कि वो या तो उस फतवे का पालन करे या उस एहतियात का पालन करे। यानी क्या? यानी ये कि उस फतवे के मुकाबले में वो दूसरे मुज्तहिद के फतवे का पालन नहीं कर सकता। ये एहतियात मुस्तहब की बात है। और दूसरी बात जो आती है वो एहतियात वाजिब की बात आती है। एहतियात वाजिब में एक मुकल्लफ को ये स्वतंत्रता दी गई है और कहा यह गया है चाहे तुम इस एहतियात का पालन कर लो और चाहो तो किसी दूसरे मुज्तहिद की तरफ चले जाओ जो इस मुज्तहिद के बाद सबसे आलम है, चाहो तो उसका फतवा देखो और उसके अनुसार अपना कार्य करो, उसका पालन करो। तो ये थी एहतियात के बारे में वो चीज़ें जो हमने आपको बयान की। तो हमने आपको बता दिया कि फ़िक्ह के जानने के तीन रास्ते हैं, इज्तिहाद है, तकलीद है और एहतियात है। यहाँ पर हमारी ये बहस समाप्त होती है। इसके बाद बहस शुरू होती है तहारत या पवित्रता की। तहारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हर मुसलमान को इस बात का निमंत्रण दिया है कि वो साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ कपड़े पहने और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखे। लेकिन इसके अतिरिक्त बाज़ स्थानों पर ईश्वर ने उस मुसलमान के लिए कहा है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर वाजिब है कि स्वच्छता के साथ साथ तुम पवित्रता का भी ध्यान रखो। तो पवित्रता में सबसे इंसान के जो फ़िक़ी मसाइल होते हैं उसमें सबसे पहला जो मसला होता है वो है फ़िक़ी मसले में वाजिब, और वाजिब में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है नमाज, जिसके बारे में हमारी हदीसों में बहुत ज़्यादा हदीसें आई हैं और क़ुरान ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। जैसे कहा गया सलात उमुद्दीन, एक मुसलमान की पहचान है नमाज। तो नमाज पहला वाजिब है, और नमाज में जो चीज़ वाजिब होती है वो तीन प्रकार की होती है। वो चीज़ें जो उसकी प्रस्तावना से संबंधित होती हैं, यानी क्या मतलब, यानी वो कार्य जो मुकल्लफ के ऊपर वाजिब हैं कि वो नमाज आरंभ करने से पहले उन कार्यों को पूरा करे। दूसरे वो कार्य हैं जो मुकारिनात कहे जाते हैं, यानी क्या, यानी वो कार्य जो नमाज के साथ साथ एक मुकल्लफ अंजाम देता है, यानी वो तकबीरतुल एहराम से शुरू होते हैं और सलाम पर समाप्त होते हैं। ये वो कार्य हैं जिनको मुकारिनात कहा जाता है। और नमाज में जो तीसरे कार्य हैं उसे कहा जाता है मुत्तिलात, या ये वो कार्य हैं जिनको अगर एक मुकल्लफ अंजाम दे देता है, जिनको एक अगर मुकल्लफ करता है तो ये उसकी नमाज को तोड़ देते हैं, उसकी नमाज बातिल हो जाया करती है। और सबसे पहली चीज़ जो नमाज में वाजिब होती, नमाज में कुछ चीज़ें वाजिब हैं, जैसे तहारत वाजिब है, जैसे कि ये वाजिब है कि उसका जो है कपड़ा पवित्र हो, उसके नमाज के बारे उसका स्थान सही हो, क़िबले का ज्ञान रखता हो, अज़ान इक़ामत। इन सबसे पहला स्थान चूँकि तहारत का है, लिहाजा हम इस अपनी बहस में और उसके बाद की बहसों में तहारत से संबंधित यानी वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम से संबंधित मसलों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मसला जो आता है वो आता है वज़ू का, कि एक मुकल्लफ के लिए आवश्यक ये है कि वो नमाज शुरू करने से पहले, वो नमाज आरंभ करने से पहले अपने आप को उस महान ईश्वर की आराधना के लिए तैयार करे। वो तैयारी किस प्रकार की? वो तैयारी इस प्रकार की है कि वो पहले जाए और जाने के बाद वुज़ू करे। वुज़ू दो प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार के कहा जाए, यानी दो कार्य होते हैं वुज़ू में। पहले कार्य वो हैं जिनमें शरीर के अंगों को धोया जाता है, और दूसरा कार्य वो है जिसमें शरीर के अंगों को पर मसा किया जाता है, यानी छुआ जाता है सिर्फ ऐसे। और वो अंग जिनको धोया जाता है उसमें सबसे पहले चेहरा शामिल है, उसके बाद हाथ शामिल हैं, और वो शरीर के वो अंग जिनको छुआ जाता है या जिनको मसा किया जाता है वो सर का मसा है और पैरों का मसा है। जब धुलने की बात आती है, जहाँ तक कि शरीर के वो अंग जिनको धुला जाता है उसमें सबसे पहला चेहरा है। इन धुलने वाले अंगों में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। यानी क्या मतलब? यानी ये कि अगर चेहरे को धोया जाए तो पहले इधर से शुरू करे और यहाँ पर समाप्त करे। इसी तरह से दाहिना हाथ अगर है या बायां हाथ है तो पहले कोहनी से आरंभ करे और अपनी उंगलियों पर समाप्त करे। और इसी तरह से वो धुलने वाले चीज़ों में शरीर का वो अंग जो बालों से छिपा हुआ है, अगर बाल बहुत ज़्यादा हैं तो इस बात की आवश्यकता नहीं है कि बालों के अंदर पानी पहुँचाए और खाल तक पहुँचाए। लेकिन मेरे वो भाई जो दाढ़ी छोटी रखते हैं उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि अगर दाढ़ी छोटी है और दाढ़ी के अंदर से चेहरे की खाल दिखाई दे रही है तो उनके लिए आवश्यक ये है कि पानी को जिस टाइम वो चेहरे पर पानी डालें, पानी को इस प्रकार डालें और इस प्रकार उसके ऊपर हाथ फिराएं कि पानी बालों के बीच से होता हुआ खाल तक पहुंच जाए। लेकिन मेरे वो भाई जिनकी दाढ़ी माशाल्लाह बड़ी बड़ी है, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए ये चीज़ आवश्यक नहीं है। बल्कि अगर वो अपनी दाढ़ी के बालों को भी पानी से भिगो लेते हैं तो वही उनके लिए काफ़ी होगा। इसी प्रकार बास चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे के ऊपर ऐसे दिखाई देती हैं। मसलन क्या, जैसे कि नाक का अंदरूनी हिस्सा, चेहरे का अंदरूनी भाग, या कान का अंदरूनी भाग, या इस तरह की आँखों का अंदरूनी भाग, या होंठ का अंदरूनी भाग, ये वो भाग हैं जिनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वुज़ू का पानी उन तक पहुँचाया जाए। ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर इनके ऊपरी भाग तक वुज़ू का पानी पहुँच गया है तो उसका वुज़ू सही है। लेकिन चूंकि इंसान को इस बात का यकीन करना आवश्यक है कि उसका वज़ू का पानी हर उस स्थान तक पहुंच गया है जहां जिस स्थान पर पहुंचाना अनिवार्य था, इसलिए उसके लिए आवश्यक ये है कि इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा धो ले। और जब इसको थोड़ा थोड़ा धो लेगा तो उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हर वो स्थान जहाँ पर हमको वज़ू में पानी पहुँचाना था वहाँ पानी पहुँच गया है। और इसी के बाद एक बहस जो हमारे यहाँ बहुत पूछी जाती है, वो कहते हैं कि वज़ू में जब हम धुल रहे हैं तो कितनी बार पानी का प्रयोग किया जाए, किसी अंग को, किसी हिस्से को, किसी शरीर के अंग को कितनी बार धोया जाए। तो इसमें एक बात जान लीजिए कि पहली बार जब इंसान पानी लेके डाल रहा है तो पहली बार धोना वाजिब है, दूसरी बार अगर धो रहा है तो ये जायज़ है, और तीसरी बार धोना हराम है, यानी तीसरी बार पानी नहीं डाल सकता। यहीं पर बहस आती क्या मतलब तीन मरतबा का दो जायज़ या हराम होने का। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि हमेशा एक बार, दो बार या तीन बार का मतलब ये नहीं कि पानी डालना, मतलब ये है कि एक मरतबा जब वो अपने शरीर के अंग पर, मसलन जैसे कि चेहरे पर अगर पानी डाल रहा है तो उसका मतलब ये है कि जब पानी वो डाले तो चेहरे के ऊपरी हिस्से से आरंभ होकर निचले हिस्से तक पानी एक बारे पहुंच जाए। अगर पानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक ही बारे पहुँच जाता है तो उसको एक बार माना जाएगा। लेकिन अगर वो कई बार पानी डाले, लेकिन कई बार करने के बाद पानी यहाँ तक पहुँचा है, तो जितनी बार भी पानी डालेगा जब एक बार वो पानी निचले हिस्से तक पहुँच जाएगा या शरीर के उस भाग तक पहुँच जाएगा जिसको धुला जा रहा है तो उसका एक बार माना जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी एक बार, दो बार और तीन बार में मेयार मापदंड पानी का डालना नहीं है, बल्कि मेयार और मापदंड उस हिस्से पर पानी का पहुंचना है। और इसी जगह पर चूंकि ऊपर कहा गया कि तीन मर्तबा पानी का डालना हराम है, इसके बारे में एक दो मसले हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले भाग में बताएं। हम अगले भाग में इसी इन्हीं मसलों को फिर लेकर आएंगे। हमारी प्रतीक्षा कीजिए। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।